الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا عزتنا علما. تو اس کلاس میں ہم اپنے حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات ان کی کتاب مثالی عورت میں سے مثالی ماں کا عنوان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ذیلی عنوان سب ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچوں کی اب جو کلاس ہے یعنی چھوٹے بچوں کی کیٹیگری، اس کے اندر آپ کن بچوں کو شامل کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اس کے حساب سے تو جو بالکل نیو بورن بیبی ہے تو وہیں سے چھوٹے بچے شروع ہوئے، یعنی چھوٹے بچے نا وہ 6 سال کی عمر سے نہیں چھوٹا بچہ شروع ہوا بلکہ نیو بورن سے ہی جو ہے وہ چھوٹا بچہ شروع ہو گیا. تو اب نیو بورن سے لے کر کے اس کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹے سے وہ بڑا یعنی اب یہ والی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ تعلیم و تربیت تو یہ اس وقت تک کرنی ہے نا جب تک وہ چھوٹا رہے. تو اب تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب تک آپ اس کو چھوٹا سمجھتی ہیں اور کب اس کے بعد اس کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ تعلیم کی بات آئے گی تو ماں کہے گی نہیں اب تو بڑا ہو گیا ہے اب تو مجھے اس کی تعلیم نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر بہو کی بات آئے گی جہاں پہ شادی کی بات آئے گی تو وہ اگر 40 سال کا بھی ہو جائے گا نا تو بھی کہیں گے ابھی تک چھوٹا ہی ہے ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ صحیح سے رہنا نہیں آیا ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا نہیں آیا ابھی تک اپنا گھر ہینڈل کرنا نہیں آیا ہے نا. 40 سال کا بھی ہو جائے گا تو چھوٹا ہی رہے گا، حتیٰ کہ اگر وہ زندہ ہیں اور ہوش و حواس میں ہیں تو 50 سال کا بھی بچہ ہو جائے گا تو بھی وہ چھوٹا ہی رہے گا. لیکن جب اپنی اپنے مشغولیت کے راستے میں اس کی تعلیم آڑے آ رہی تھی تو جی بس اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے اب تو مجھے اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو تعلیم جو ہے وہ اسکول سے کرواؤں گی اس کی، اب تو کوئی اور اس کی تعلیم کرے گا مجھے کیا ضرورت ہے اس کی تعلیم کے بارے میں فکر کرنے کی. تو وہ 6 سال کا بھی جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا پھر ان کی نظر میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کی نظر جو بھی ہو ہم تو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا جس کی تعلیم کی ذمہ داری ناٹ ہولی 100% نہیں لیکن اتنی ذمہ داری ضرور ہو کہ اس کو ماں کو پتہ ہو کہ اس کی تعلیم جو ہے نا وہ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے. تو اتنا جو ہے نا وہ آج کل 8ویں جماعت کہلاتی ہے جس میں کہ 13-14 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں وہ 8ویں جماعت تک کے ہوتے ہیں. تو اس وقت تک ماں کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کم از کم 8ویں جماعت تک کے بچوں کی ماؤں کو تو پتہ ہونا چاہیے. 9ویں جماعت میں تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہے نا وہ ماں کے سر کے اوپر سے اکثر ماؤں کے سر کے اوپر سے وہ والی تعلیم گزر جائے گی. لیکن بہت ساری مائیں ایون 9th اور 10th تک کی تعلیم کو بھی ہینڈل کر سکتی ہیں، خود سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے اور کس سے پڑھوانا ہے اور کس سے نہیں پڑھوانا ہے. یہ سب جو ہے نا وہ ماں کو اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی تعلیم کو اون کرنے کی ڈس اون کرنے کی بڑے نقصانات ہیں. ڈس اون نہ کریں، کسی اور کے متھے مار کر کے یا کسی اور کے حوالے کر کے خود جو ہے نا وہ مشغول ہو گئی ہیں دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول ہو گئی ہیں اور بچے کی تعلیم جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ اسے بس خالی جو ہے نا وہ اس کو گریڈز دیکھتے ہیں، بس اینڈ ریزلٹ دیکھنا ہے کہ گریڈ کیا آ رہے ہیں اس کے. یہ گریڈ دیکھ لینا جو ہے نا یہ تعلیم کو اون کرنا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں اس کے گریڈس کیا آئے، صرف یہ نہیں ہوتا تعلیم کو اون کرنا. تو چھوٹے بچے کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ دونوں کی بات ہی ہو رہی ہے، صرف تربیت کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات بھی ہو چکی ہے اور الحمدللہ تعالیٰ نے کچھ لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے اس کے اوپر، وہ بھی ان شاء اللہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی جلد شیئر کرنے کے تعلیم و تربیت کے بارے میں. बहरहाल तो हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर, वो था कि बच्चे के जो टैंट्रम्स होते हैं तो उनके बारे में आदत ने कुछ बातें करी थी। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, बच्चे के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए, उसको पुरसुकून करने के लिए कुछ काम करने चाहिए, छोटे मोटे काम जैसे होल्ड हिम, हग हिम, और इफ इट्स अ हर होल्ड हर, हग हर। बच्चियां ज्यादा वैसे अलहमदुल्ला टेंट्रम्स थ्रो करती नहीं है, बच्चे जो है वो ज्यादा थ्रो कर रहे होते हैं, इस वजह से हिम का सिवा यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। डोंट पुट हिम इन अ टाइम आउट रूम, यानी राइट अवे वहां से टाइम आउट देने से जो है ना वो बात को शुरू ना करें, बल्कि होल्ड करने से, हग करने से, किस करने से टाइम बात को शुरू करें अगर वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वह देखते हैं न्यूरो टेंट्रम्स वाली बात भी करी थी कि वो जानबूझ करके कुछ टेंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है। कुछ टेंट्रम्स तो ऐसे भी होते हैं कि जो उसके कंट्रोल में नहीं होते, वो बस कर रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि वो जो है ना वो यानी जानबूझ करके वो कर रहा है गेट समथिंग आउट ऑफ यू। ठीक है, तो ऐसे में भी जो है ना वो डोंट स्क्रीम, डोंट शाउट एट द किड। तो लेकिन साथ साथ जो है ना वो उसको वो चीज दे मत दे जिसके लिए जो है ना वो ये न्यूरो टेंट्रम जो है वो थ्रो कर रहा है, या एक मॉक अटैक कर रहा है, झूठ मूठ का जो है ना वो ऐसे मामला कर रहा है क्योंकि उसको कोई चीज आपसे चाहिए है, कोई चीज निकलवानी है आपसे। ठीक है, तो वो देख रहा है कि भाई वो सीधी उंगलियों से, अम्मा मुझे ये चीज नहीं देंगी तो मैं टेढ़ी उंगलियों से उसको हासिल करने की कोशिश करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वो चीज मत दे। अगर आप उसको वो चीज दे देंगी तो उसके यानी ब्रेन के अंदर जो है ना ये चीज हार्ड वायर हो जाएगी, वो उस बात पे कन्विंस हो जाएगा कि अच्छा अम्मा से जो है ना वो चीज लेने का यही तरीका है। और आजकल जो है वो उमूमी तौर पर सेल फोन्स के लिए और डिवाइसेस के लिए जो है वो बच्चे यही वाला तरीका इख्तियार कर रहे होते हैं कि चीखना चिल्लाना, जमीन पे लोटना पोटना और उल्टी सीधी इस किस्म की हरकतें, और माँ साहिबा जो है ना वो फोन दे देती है उसको। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक साइकोलॉजिस्ट साहब का इंटरव्यू भी शेयर किया था, उम्मीद है कि सबने सुना होगा कि भाई ये इस तरीके से जो आप फोन दे देती है ना बच्चे को कि भाई अब क्या करूँ, वो तो ऐसे कर रहा था, तो फिर आप जो है ना वो बेसिकली अपने गड़े खुद खोद रही होती हैं, अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। तो उसमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है फोन के लिए तो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे तो नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारे बच्चे क्या वो किसी दूसरी सैयारे से आए हुए हैं, या वो जो है वो इंसान के बच्चे नहीं है, वो पता नहीं किसी और मखलूक के बच्चे हैं जो वो आज के जमाने में भी फोन के लिए जिद नहीं कर रहे हैं। भाई कोई उसके लिए आपने मेहनत करी है, कोई उसके लिए आपने कॉन्टेक्ट बनाया है, कोई उसके लिए आपने उनको ऑल्टरनेटिव दिए हैं, और उस माहौल से जो है वो बचाने की भरपूर कोशिश करिए जिस माहौल के अंदर हर बच्चे के पास फोन होता है, तब वो आपसे नहीं मांग रहे हैं इस तरीके से फोन। और जिस माँ बाप ने जो है वो इसके ऊपर कोई फिक्र ही नहीं करी, कोई मेहनत ही नहीं करी, तो अब तो उसके बच्चे इसी तरीके से फोन मांगेंगे ना, जब वो दूसरे बच्चों को देखेंगे कि ऐसे ऐसे अकलमंद किस्म के लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जो कि बड़े फखर के साथ कहते हैं कि जी मैंने तो जी 4-5 साल की उम्र से ही अपने बच्चों को हर किस्म की डिवाइसेस दे दी है। एक खातून का जो है वो किसी ने आप में से किसी ने इंटरव्यू शेयर किया, इंटरव्यू नहीं था पता नहीं क्या प्रोटोकॉल, कहती है कि मैं रिसर्च में हूँ। क्या हूँ मैं रिसर्च में, यानी रिसर्च में होना ये उनका सबसे बड़ा जो है ना वो क्वालिफिकेशन थी, तो मैं तो रिसर्च में हूँ ना, तो इस वजह से जो है ना वो मैं जो कह रही हूँ वो आप मेरी बात मान लें। पहली बात तो ये आप हैं कौन, ठीक है ना, मतलब रिसर्च में हूँ खाली ये कह देने से मतलब ये है कि गोया कि आप कह रही हैं मैं अल्लाह की नबी हूँ, ठीक है ना, मैं अल्लाह की वली हूँ, या मैं उसी किस्म की कोई और चीज हूँ, तो इस वजह से आप मेरी बात माने। तो इस वजह से ना हमने अपने कुछ दोस्तों को वाला जो 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 ऑडियो क्लिप था वो फॉरवर्ड किया, और उसका टाइटल क्या रखा, मैं रिसर्च में हूँ, राइट। उन खातून का क्लेम सबसे बड़ा क्या था या रीजन फॉर पीपल टू लिसन टू, कि मैं रिसर्च में हूँ। अब जो मैं कह रही हूँ आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कुट्टी हो जाऊंगी मैं आपसे, ठीक है? तो मैं रिसर्च में हूँ, तो मैंने तो 4-5 साल की उम्र से जो है ना वो अपने घर के हर बच्चों को घर की हर डिवाइस दे दी, ठीक है? तो अच्छा क्यों दे दी, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो इस बात पे यानी कायम थी कि मेरे बच्चे ने हर किस्म के माहौल में जाना है, ठीक है ना? तो अब जब हर किस्म के माहौल में जाएगा तो फिर वो जब दूसरे बच्चों को देखेगा तो उसके जो है वो दिल के अंदर कसक पैदा होगी, और फिर जो है वो महरूम फील करेगा अगर उसके पास फोन नहीं होगा। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला कि हर बच्चों को डिवाइस दे दी। तो इसी के ऊपर जो है ना वो हमारे हजरत जो है वो एक शेर पढ़ा करते हैं, ठीक है? कि कौन सा शेर पढ़ते हैं, किसी को याद? मीर क्या सादा होए, मीर क्या सादा है, बीमार होए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, ठीक है? यानी पहले जो है ना वो आप बीमारी पैदा करें, और फिर जिसने बीमारी पैदा करी है ना, जिसने यानी आपको बीमार करने में अपना रोल प्ले किया, उसी के बाद जाकर के उस बीमारी की दवा लेकर के आए, ठीक है ना? तो पहले जो है वो आप अपने बच्चों को गंदे माहौल और बुरे माहौल और बेवकूफों के माहौल से एक्सपोज करें, और जब उसके बाद फिर वो फोन्स के और डिवाइसेस वाले माहौल के साथ यानी वो उस बुरे माहौल का हिस्सा बन जाए, अब जो है ना वो उसके अंदर जो एहसास महरूमी पैदा हो सकता था तो उसको जो है ना वो कर्ब करने के लिए आप उसको भी एडवाइस दे दें। कितना जबरदस्त इन्होंने रिसर्चर साहिबा ने हल निकाला है इस बात का, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है दीनदार तो ये भी होंगी, बाय द वे ये भी नहीं कह सकते कि दीन से इनको कुछ वास्ता होता तो ऐसी बात ना करते, क्योंकि आजकल तो हर एक को दीन से वास्ता है, और हर एक जो है वो दीनदार है, और हर एक को ऐसा ही है कि जी सबसे ज्यादा दीन उसी को आता है, ठीक है? तो दीनदार तो ये भी होंगी यकीनन, रिसर्च के साथ साथ ये दीन में भी होंगी, बल्कि हो सकता है दीन के लेक्चर्स भी देती हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? लेकिन आज का दीन और नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का जो दीन था ना उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना? तो आज का दीनदार जो है ना वो फिर 21st सेंचुरी का दीन का दीनदार होता है, वो पहली सेंचुरी के दीन का दीनदार नहीं होता। पहली सेंचुरी से मुराद हिजरी, नबी अलैहिस्सलाम के उसका जो दीन था ना उसका दीनदार नहीं होता। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने माहौल बनाया, ठीक है, सहाबा के साथ मिल करके जो है ना वो एक पूरा एक यानी एक ऐसी जगह बनाई कि जहां पर के बुरे माहौल का असर नहीं, ठीक है? ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के बच्चों को और अपनी औरादों को जो है ना उठा उठा करके जो है वो मुशरिकों के पास भेजा कि हाँ भाई दे शुड बी एक्सपोज टू एवरीथिंग सो दैट दे कैन बी बिकम बोल्ड, राइट? हमारे बच्चे जो है ना वो बोल्ड हो सकें, तो इस वजह से ना उनको हम यहूदियों के घरानों में भेजेंगे, राइट? या जो है वो आराबियों के घरानों में भेजेंगे जो कि काफिर हैं, ताकि हमारे बच्चे बोल्ड हो सकें, सो दैट दे कैन लर्न टू डील विद पीपल, है ना? ये सुन के खराफात जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है? बोल्ड कैसे बनेंगे, डील कैसा करने कैसे आएगा उनको, हमारे पास ज्यादा अकल है ना, इस वजह से बातें बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम तो उनको तो बातों की समझ नहीं थी ना, ठीक है? तो आपका बच्चा अगर फोन के लिए ऐसे मचल रहा है और ऐसे जिद कर रहा है, उसकी वजह यह है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना था, और अच्छा माहौल देने के लिए आपको खुद अच्छे माहौल के साथ जुड़ना था, तब आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल देंगे ना। खुद तो जुड़ना नहीं है, खुद तो माहौल का हिस्सा बनना नहीं है, तो फिर बच्चों के लिए ऑब्वियसली आपके पास अच्छा माहौल कहाँ से आएगा, कहाँ से बच्चों को अच्छा माहौल देंगे, ठीक है? अब जो है ना वो यानी फिर उसके बाद बच्चा जो है वो जमीन पर लोट लोट करके मोबाइल के लिए जब जिद कर रहा होता है तो कहती है ये तो जी मजबूरी है, अब तो देना ही पड़ेगा। हाँ भाई तो वाकई आपकी मजबूरी है, अब आप जो है वो क्या करेंगे, वो जमीन पर लेटे हुए और चिल्लाते हुए बच्चे को आप क्या करेंगे, जेल में बंद कर देंगे उठा करके, हर वक्त जो है वो टॉयलेट में बंद करती रहेंगी आखिर को उसको उठा करके। अब तो जाहिर सी बात है, यू गॉट योर सेल्फ इन टू दिस मेस राइट, आपने खुद अपने आप को जो है वो इस मुसीबत का शिकार किया है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर तो मोबाइल फोन की बात हजरत नहीं फरमा रहे थे, ये तो जरा कम दर्जे की, क्योंकि इवन जिन घरों के अंदर ये मसले नहीं भी होते हैं वहां पर भी कभी कभी बच्चों के अंदर ये टेंशन वगैरह जो है आ जाते हैं, तो उनको फिर मैनेज करने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना फिर मेक देम सिट इन अ सेपरेट रूम, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड बी फर्म, से क्लियर नो। ठीक है, बच्चे को आंखों में आंखें डाल करके नो कहना सीखें, हत्ता कि कभी उसको कंधे से पकड़ कर, जैसे कभी जो है ना वो आजकल की खवातीन जो है ना वो अपने शोहरों को भी कंधे से पकड़ करके झंझोड़ देती हैं, शोहरों को भी झंझोड़ देती हैं। ठीक है, तो शोहर को मत झंझोड़ा करें, बल्कि शोहर के साथ नरमी के ऊपर किसी बात हो चुकी है, बच्चे को कभी कभी जरा बाजुओं से पकड़ करके जो है ना वो उसकी आंखों में आंखें डाल करके नो, या उर्दू में नहीं ऐसे कहना होता है बच्चे को। ठीक है, तो बहस मुबाहिसा ना करें और सख्ती के साथ उनकी बात को रद्द कर दें। ठीक है, यूज ह्यूमर टू गेट देम आउट, यानी मजाक करें, जो ऐसे बच्चे जो प्योर टेंट्रम के मूड होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, यूज टाइम आउट एज ए लास्ट रिसोर्ट, यानी आखिर पे उसको कोने में खड़ा करें ताकि बच्चे को पता हो कि अगली दफा मैंने ऐसा नहीं करना है वरना मुझे सजा मिलेगी। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, या तो उसी कमरे के अंदर कोने में खड़ा कर देना, पर इफ इट्स नॉट वर्किंग तो कोने में खड़ा होने के बावजूद जो है इट्स पार्ट ऑफ ऑल द फन, तो उसको जो है वो फिर किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज ना हो। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसे कमरे में बच्चे को टाइम आउट दे दिया जहाँ पे छुरियां मौजूद हैं या जहाँ पे आग लगाने वाली कोई चीज मौजूद है। ठीक है ना, तो अभी तो वो टेंटरम मोड के अंदर है, पता चला उसने जो है वो माचिस जला करके जो है ना वो कपड़ों को आग लगा दी, ऐसा भी हो सकता है, या छुरी से जो है ना उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, या कोई और चीज काटनी पीटनी शुरू कर दी। ठीक है, तो टाइम आउट रूम भी जो है ना ये भी चेक करके फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, बल्कि टाइम आउट से भी पहले एक और भी काम करना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि उसको जो आपने खिलौने दिए हुए हैं या कोई ऐसी प्रिविलेज दी हुई है या कोई ऐसी चीज जो उसको पसंद है तो उसको ले लेने की धमकी उसको दें कि आप अब हम आपको खेलने के लिए नहीं भेजेंगे, या बच्ची है बच्ची को जो है वो दोस्तों के साथ खेलने का वक्त मिलता है तो अब हम आपके दोस्तों को नहीं बुलाएंगे घर पे, या आपको आपकी दोस्त के घर पे खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इतना भी काफी हो जाता है। शाउटिंग और हिटिंग, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, चीखने चिल्लाने की और जो है ना मारपीट करने की, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट है, क्रिएट इफेक्टिव फैमिली रूल्स, मेक देम क्लियर एंड कंसिस्टेंट, यानी घर में मुअसर अंदाज से कवानीन बनाएं, सबको वजाहत के साथ उनकी पाबंदी करने का बताएं, एंड ऑलवेज गिव अ रीजन फॉर द रूल, यानी घर में जो भी कानून बने उस कानून की वजह भी बच्चों को समझाएं ताकि बच्चों को पता चले कि घर में यह कानून क्यों बनाया गया है, फिर वो इस कानून का एहतराम करते हैं। क्या बच्चों को दूसरे के घर खेलने भेजना सही है, क्योंकि क्यों क्या इन्होंने लिखा है, क्यों क्या बच्चों को दूसरे के घर खेलना भेजना सही है, क्योंकि सिड वहां के माहौल अडॉप्ट न कर रहे, क्योंकि शायद वहां का माहौल एडॉप्ट ना कर रहे, शायद शायद एस एच से शीन की आवाज निकलेगी वरना शायद बनता है ये, तो उसकी वजह यानी बच्चों को दूसरे के घर पे खेलना, थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था, माहौल बनाए, या अगर माहौल मौजूद है तो उस माहौल का हिस्सा बने। ठीक है ना, जब अच्छे माहौल का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपके पास ऐसे घर मौजूद होंगे कि जहां पे आपको इत्मीनान हो कि वहां पे बुरे माहौल माहौल नहीं है। ठीक है, वहां पर बुरा माहौल नहीं है, वहां पे आपके बच्चे सेफली खेल सकते हैं वहां पे जा करके। वहां पे टीवी नहीं है, वहां पे जो है वो बेपर्दगी नहीं होती है, वहां पे म्यूजिक नहीं होती है, वहां पे गालम गलोच की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती है, वहां पे एब्यूसिव जो है वो एक्शंस नहीं लोग एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ऐसे घर में खेलने भेजना है कि जहां का माहौल अच्छा हो, ये बुरी बातें उस माहौल में ना हो। अगर ऐसा कोई घर आपके पास नहीं है तो फिर हरगिज मत भेजें, हरगिज मत खेलने के लिए भेजें किसी दूसरे घर। लेकिन मुश्किल है ये बहुत ना, आपका बच्चा जो है वो घर के अंदर ही बैठा बैठा है, बैठी बैठी जो है वो, उसको भाई बच्चा है, उसको खेलने की जरूरत है, उसको जो है वो फ्रेंड्स की जरूरत है, ठीक है। तो इस वजह से ना माहौल बनाना भाई सुन्नत है। क्या सुन्नत के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है? क्यों गुजारा हो सकता है हमारा सुन्नत के बगैर? कैसे गुजारा हो सकता है हमारा सुन्नत के बगैर? नबी अलैहिस्सलाम ने माहौल बनाया तो फिर हम क्यों नहीं माहौल बनाने की मेहनत करते हैं? राइट, तो माहौल बनाएंगे तो आपके लिए खुद आसान हो जाएगा, आपके बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। अच्छी तरबियत करना, अच्छा जो है वो सेहतमंदाना मिजाज सीखना सिखाना, ये सब आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना तो हर किस्मत मत भेजें अगर कोई ऐसा घर आपके पास अवेलेबल फिलहाल नहीं है। अच्छा, कवानीन की जो बात हो रही है तो इसमें ये बात याद रखें कि घर जो है ना ये कोई मिलिट्री एकेडमी नहीं है, ठीक है, ये कोई फौजी तरबियत गाह नहीं है आपका घर, सही है। तो कानून बनाने का मतलब हरगिज यहाँ पे ये नहीं है हजरत का कि कोई आप इतना जो है ना वो फौजी ट्रेनिंग कैंप बना रहे हैं अपने घर, ठीक है। तो इस वजह से ना जिस तरह से वहां पर उसूल होते हैं, उस दर्जे के उसूलों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि एक एक चीज जो है ना वो बिल्कुल यानी जैसे जैसे कि रंग रूट होते हैं फौज के, जैसे जो 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 पुलिस के कॉन्स्टेबल्स होते हैं वो उस तरीके से आप अपने बच्चों को बना दें या अपने आप को बना दें या घर को उस तरह का बना दें, ये बात नहीं हो रही है। लेकिन कवानीन बनाने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कोई कानून नहीं आपके घर के अंदर, जिसकी जो मर्जी आए वो आकर के वो आपके घर के अंदर करना शुरू कर दे, या जो आपके बच्चे जो हैं वो, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजार रहा है और कोई एक रब्त ही नहीं है कोई घर के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से कवानीन जो हैं वो सबसे पहले तो वो होने चाहिए कि शरीयत की हुदूद ये हमारे घर के अंदर हरगिज हरगिज पामाल नहीं की। शरीयत की हुदूद, इनके कवानीन तो फर्ज है, यानी ऐसा ना हो कि आपके घर के अंदर जो है ना वो टीवी चल रही है, म्यूजिक चल रही है, या जो है वो झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, या कोई बेहयाई का काम हो रहा है, कोई नहीं, ये कानून है, ये तो होना ही नहीं है, इसको तो जीरो टॉलरेंस है, ठीक है। कानून बनाने का मतलब ये होता है कि जी अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो झूठ सबसे अहम चीज, झूठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। नमाज को नहीं छोड़ा जाएगा, ये कानून, ये कानून कि नमाज नहीं छोड़, ठीक है। फजर के अंदर भी 6 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 7 साल 6 साल के ऊपर जो है ना वो बच्चों को फजर के लिए उठा, या बच्चा 6 साल का बच्चा चले उसको भी उठा नहीं रहे, लेकिन अगर वो उठ गया, बेटा अब आप उठे हुए थे तो आप हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 7 साल से जो है ना वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चों को उठाया जा रहा है, और सारे बच्चे जो 7 साल की उम्र के ऊपर उठते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज के लिए कहो, ठीक है, 7 साल की उम्र में। तो क्या नमाज में फजर की नमाज आप नहीं होती? अच्छा जरा होल्ड कीजिएगा, कुछ ठीक ठीक है। तो इस तरह के कवानीन की बात हो रही है, और इन कवानीन से जो है ना वो कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी कानून बना कि जी कोई बाहर से भी अगर हमारे घर में बतौर मेहमान भी आता है ना तो उसको भी आकर के जो है ना वो यहाँ पर हमारे घर के अंदर बैठ करके ये यानी फिल्मों की बातें करना, अब दूसरे बच्चे आए हुए हैं और हमारे घर में बैठ करके हमारे बच्चों से फिल्मों के बारे में बात करना शुरू कर दें, नो दैट्स नॉट अलाउड, हमारे घर में इस तरह की बात नहीं होती, ठीक है ना। फिल्मों फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई वो अब ये तो नहीं कर सकते कि बाहर का बच्चा आया हुआ है वो खुद फोन इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैमिलीज के अंदर बच्चे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अपना फोन दिखाना, नो दैट्स नॉट अलाउड। आप हमारे बच्चों को जो है ना वो चीजें नहीं दिखा सकते जो कि आप खुद देखते हैं। ये कानून इवन मेहमानों के ऊपर भी यह कानून अप्लाई करना, ठीक है ना, ये मेहमानों के ऊपर भी ये कानून अप्लाई करना कि जी आप हमारे बच्चों को फोन नहीं दिखा सकते, ठीक है। और इसके अंदर फिर जो है ना वो कुछ ऐसे लोगों को भी इस कानून के तहत लाना पड़ता है कि जिनको के उमूमी तौर पर उनके सामने हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनको भी इस कानून के तहत आना, ठीक है। ये भी कानून होना चाहिए, किसी ने लिखा है कि ये भी कानून होना चाहिए कि मगरिब बाद घर से बिला वजह कोई बाहर ना जाए, क्या ये सही है? मगरिब के बाद बिला वजह कोई बाहर ना जाए, क्या ये सही है? बच्चों के लिए तो ये सही है, ठीक है, बड़ों के लिए तो आप ये कानून नहीं बना सकते कि आप कुछ और भी जाए मगरिब के बाद बाहर ना जाए, सही है। खुसूसन अगर आप गाँव वगैरह के माहौल में रहते हैं और वहां पर जाहिर है कि यानी बाहर कोई फिजिकल खतरा भी मौजूद है, या शहरों के अंदर भी दूसरे किस्म के इंसान खतरा होते हैं, गांव वगैरह के अंदर जो है वो जानवर खतरा होते हैं, तो हाँ इस किस्म का कानून आप बना सकते हैं घर के बाहर बगैर वजह के बाहर नहीं जाना, बच्चों के लिए तो मुश्किल भी सकते। तो इस तरह के कानून की बात हो रही है, और इस कानून के जो है ना वो वजह भी बच्चों को बता दें तो फिर वो उनके लिए इसको अप्रिशिएट करना और इसको फिर फॉलो करना के लिए आसान हो जाएगा, बगैर वजह के अगर आप कानून बना करके बस उनके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इफ चाइल्ड ब्रेक्स द रूल डोंट शाउट, यानी अगर बच्चा किसी कानून को तोड़े तो चिल्लाना नहीं चाहिए बल्कि हेल्प देम टू फॉलो द रूल, यानी उनकी मदद करें ताकि वो उस कानून पर अमल कर सकें, ठीक है। तो आपके मुल्क का कानून है, अब देखें कि चंद बातें हैं जो कम से कम जाहिरी तौर पर काफिरों ने आजकल सीखी हुई है ना, तो चंद बातें और जाहिरी तौर पर सीखी हुई है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, एकदम ही जो है ना वो काफिर को मुसलमानों से ज्यादा अफजल बना देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि दी असल इस्लाम तो काफिरों ने सीखा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सब तमहीद के साथ बताना ये चाह रहा था कि अमेरिका यूरोप वगैरह के अंदर जाएं तो अब आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं या आप इवन कहीं पर जा रहे हैं और आपको किसी का और आपने उनका कोई कानून ब्रेक कर दिया, तो अब पुलिस मैन आकर के जो है ना वो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू नहीं हो रहा था, या आप जो है ना वो बिल्कुल इवन कानून तोड़ने के ऊपर जो है वो फौरन से कोई फाइन भी नहीं करते, बल्कि वो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये तो बाहर का आया वो बंदा है, इसको जो है वो हमारे कानून का नहीं पता होगा, हालांकि हो सकता है पता भी हो लेकिन वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है ना पता हो, तो इसको जो है ना फिर हम बस हल्की सी वार्निंग दे करके अभी छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि भाई आपको जरा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है। चिल्लाना शुरू कर देना, मारना पीटना शुरू कर देना और जो है गुस्सा होना शुरू कर देना, और तो ये तो इवन काफिर पुलिस मैन जो है वो ये काम नहीं करते, तो मुसलमान माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ ये वाला काम कैसे कर सकती है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, तहमुल सीखना पड़ता है। अब ये पुलिस मैन अगर ये वाला काम नहीं कर रहे होते हैं ना तो उसकी भी वजह होती है कि उनको सिखाया जा रहा होता है ना, तहमुल मिजाजी और एटिकेट्स और आदाब और ये सारी चीजें उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये चीजें उनको बताई जा रही होती है कि भैया आपने ऐसे लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है। और हमारी माँ साहिबा जो होती हैं हमारे मुआशरे की माँ, वो माशाल्लाह सब कुछ जो है ना वो माँ के पेट से लेकर के आई हुई होती है, या जो है ना वो सब कुछ उनके ऊपर वही नाजिल हुई भी होती है, या ये कि आलमा कोर्स पढ़ने का सबको शौक बना हुआ, ठीक है, तरबियती क्लास लेनी नहीं है, गौर से सुनना नहीं है, बात को समझने की कोशिश नहीं करना, और इनको जो है ना वो डिग्री चाहिए या इनको जो है ना वो एंटरटेनमेंट चाहिए, ये एंटरटेनमेंट बनी हुई है उनके लिए जी, हम जो है वो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें और जो है वो अजीब सी जिंदगी हो गई है और ये हो गया, क्या मतलब हमने आपके कोई एंटरटेनमेंट का सामान बना के रखा हुआ था आलमा कोर्स का, राइट, ये जो इतना सारा इल्म जो है वो आपको लिखी सूरत में और दूसरी सूरत में दिया जा रहा है उसको तो आपने सुनना नहीं है, क्योंकि आपका मूड असल में इल्म हासिल करने का मूड किसी का नहीं था, असल में था ना मशगूलियत, हमें कोई चाहिए जिसमें कि हमारा जो है ना वो एड्रेनालाइन लेवल थोड़ा सा रेज हो सके, और हमें जो है ना वो थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल सके, और हमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने पुराने वक्त याद आ सके कि हम स्कूल में कैसे पढ़ा करते थे, और हम कैसे ग्रुप स्टडी किया करते थे, और हम कैसे जो है वो रट्टे मारा करते थे, और हम कैसे जो है वो इम्तिहान में बैठा करते थे। बड़ा लंबा अरसा हो गया हमने ये सारी चीजें अब नहीं करी, तो चलो अब आलमा कोर्स के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मशगूलियत और आपको जो है वो फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना वो आलमा कोर्स नहीं कराया जा रहा, ठीक है। तो इल्म हासिल करें ताकि जो है ना फिर उसके मुताबिक अमल कर सकें, और अमल क्यों कर सकें, ताकि अल्लाह ताला को राजी कर सकें, ठीक है। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी शाफी इल्म के जराए जो है हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, इफ द चाइल्ड ब्रेक्स द रूल डोंट शाउट, ये खाली किताब पढ़ करके और लेक्चर सुन करके खाली ये बात नहीं आ जाती, जब तक कि जो है ना वो उसके ऊपर अमल की नीयत के साथ और अल्लाह की मदद के साथ हासिल ना किया जाए, और इसके लिए अपने अंदर तहम्मुल पैदा करने के लिए जो तरीके हैं, अल्लाह ताला का जिक्र है, दुआएं हैं, ठीक है। तो इन सब का अहतमाम अगर किया जाएगा और फिर इस बात को जो है वो बार बार रिपीट किया जाएगा, तब जो है ना ये इंसान के सिस्टम का हिस्सा बनती है, और फिर डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर उसके लिए उसके ऊपर अमल करना आसान होता है। डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, यानी सजा देने की बजाय उनको उसूलों की पाबंदी करना सिखाए। फिर अगला पॉइंट है, साइंस की रिसर्च ये बताती है कि टीच चाइल्ड व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट, यानी बच्चे को समझाएं कि क्या चीज काबिले कबूल है और क्या नहीं है काबिले कबूल, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Tell them consequences that if you will do this, then this will happen. If you will do this, then this will happen. यानी इसका जो है ना वो कॉन्सिक्वेंस ये होगा, उसको उसको बता दें कि भाई अगर आपने जो है ना वो बदतमीजी करी है ना, तो वी विल नॉट फॉरगिव यू, ठीक है ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम हमें जो है ना वो आपको कोई पनिशमेंट देनी होगी, और अगर आपने किसी को मारने वाली हरकत करी है तो फिर आपको मार भी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने वैसे कोई बदतमीजी करी है तो हम आपको दूसरी तरह की पनिशमेंट देंगे, यानी आपके प्रिविलेजेस ले लेंगे, या आपकी जो है ना वो दोस्तों के घर जाना जो है वो आपको बंद कर देंगे, या फुटबॉल खेलना बंद कर देंगे, या कोई ऐसी चीज जो है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने किसी को मारने वाली हरकत करी है ना, तो याद रखें कि आपको भी मार पड़ेगी, आपको भी मार पड़ेगी, मार का बदला मार, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस उनको बता दें, यानी उनको नतीजे से आगाह करें कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और आप जो है ना वो एकदम से डराना धमकाना और इसका माहौल बना दें। भाई जब नॉर्मल चल रहा है, बच्चे ने कोई बुरा काम नहीं किया, तो आप खामखा जो है वो यानी ये कोई मुल्क का वीजा कोई थोड़ी है कि मुल्क का वीजा देने के वक्त जो है ना वो आपको सारे कवानीन बता दिए जाएंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये घर जो है ना ये कोई यानी कोई बात है, कोई मिलिट्री अकेडमी नहीं होती है कि जिसमें एडमिशन के वक्त जो है वो आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे। भाई घर में तो बच्चा जो है वो पैदा हुआ होता है, पैदाइश से जो है वो घर के अंदर ही आपके साथ ही पल बढ़ रहा होता है, तो धमकियों के साथ आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं करनी होती, वो तो आपने अच्छी ट्रेनिंग करनी है, धमकियों की नौबत ही ना आए, ठीक है। धमकियों की तो अगर नौबत आ जाए तब धमकी देनी है ना, बात समझ रहे हैं। घर के अंदर और मिलिट्री एकेडमी के अंदर और किसी मुल्क के वीजा प्रोसेस के अंदर फर्क होता है। वहां पर जो बड़े लोग होते हैं ना वो मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, तो इस वजह से उनको कवानीन बताए जाते हैं पहले से, ठीक है ना। उसी तरह से जब लोग बड़ी मेच्योर लोग होते हैं, उनको किसी मुल्क का जो है वो वीजा दे रहे होते हैं एम्बेसी वाले, तो वो अपने मुल्क के कानून बता रहे होते हैं। लेकिन घर के अंदर कोई बड़ा शख्स तो नहीं आ रहा होता ना, घर के अंदर तो बच्चा नहीं, नहीं हमें तो बच्चों की बात हो रही है ना, तो बच्चा जो है वो तो यानी पैदाइश से आपके घर का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको कवानीन बताना तो खाली उस वक्त होगा जबकि उसकी जरूरत पेश आए, वरना कोई जरूरत नहीं इस तरह की बातें करने के अंदर कि ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा, और वैसे तुम्हारी पिटाई करेंगे, और वैसे तुम्हारी पिटाई करेंगे, और वैसे हम तुम्हें जो है वो मारेंगे, और वैसे हम तुम्हें जो है वो टाइम आउट देंगे। नहीं, बच्चों के साथ ये चीज खाली जरूरतन करनी है, यानी रिएक्टिवली करनी है, प्रोएक्टिवली नहीं करनी। जिनको इन अल्फाज को नहीं पता था समझती होंगी। बात यह है कि क्लास का टाइम खत्म हो गया और हमें भी कुछ कामों से अभी काफी सारे काम करने थे, इस वजह से यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। तो आखिर दावाना अनिल, किसी ने एक सॉरी मैसेज लिखा हुआ था, उसको देख लेते हैं जल्दी से। मेरी मम्मी कहती हैं कि बच्चों को हर चीज में रोक टोक नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो और वो सीख सकें। हर चीज में रोक टोक नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो और वो सीख सकें। भाई आपकी अम्मी कहती हैं, तो आपकी अम्मी जो है ना उनसे कहें कि वो भी एक मिसाली माँ की किताब लिख लें, ठीक है ना। अगर उनको सब कुछ पहले से पता है तो फिर वही किताब लिख लें, और मुझे उन्हीं की किताब को आप पढ़ने जा करके क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई है तो फिर यहाँ पे तो आपको तवज्जो से बात सुननी होगी ना, और ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि जो चीज़ उनके नुकसान की चीज़ है ना, तो उस चीज में उनको रोक टोक नहीं करेंगे तो उनका नुकसान होगा। खाम खा के रोक टोक जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा भी पिछली क्लास में भी ये बात हुई थी कि अगर बच्चा कोई ऐसी चीज में गलती कर रहा है जिससे कि उसको नुकसान ना पहुंच रहा हो, लेकिन हाँ गलत है फिर भी, तो फौरन से आप रोक टोक ना करें, बल्कि उसको खुद जो है ना वो एक्सपीरियंस हासिल हो, वो सीख सके। तो अगर आपकी अम्मी जो है वो वही बात कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो ठीक कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर उनका मिजाज वो है कि वही जो पीछे बात हुई ना कि मैं तो रिसर्च में हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने 4 साल के बच्चों को जो है वो सारी डिवाइसेस दे दी हैं, अगर वो आपकी अम्मी उस रिसर्च में हूँ वाली आंटी की तरह के मिजाज रखती हैं, ठीक है, तो फिर तो अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, अल्लाह रहम करे, फिर अल्लाह उनसे महफूज रखे सबको, आपको भी और दूसरों को, ठीक है। तो ठीक है चलिए, बस इतनी सी बात है तो फिर हो गई। अब मुझे क्या पता आपके अम्मी कौन से वाले मिजाज की है, तो इस वजह से दोनों पॉसिबिलिटीज बयान करते। वाखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।